फिर देखिए फरमाया, सुम्मा कुली मिन कुल थमरात, फिर खा, ये भी इसको वही कही गई है, ये सारा वही का हिस्सा है कि अपना घर बनाओ और फिर खाओ कहाँ से, मिन कुल थमरात, हर किस्म के फलों में से, फसलू की, फिर चलती चल जाओ, सुबुला रब्बी की, अपने रब के रास्ते पर, जुलूलन, जो हमवार है तेरे लिए, आसान है। अल्लाह ताला ने वही की और वो अल्लाह की वही को ओबे करती है, वो वही काम करती है जैसे अल्लाह ताला ने उसको वही की है। और आप देखिए एक वही हमें भी तो की गई है, मगर हम कितना उस वही के मुताबिक चलते हैं। एक शहद की मक्खी से ये ले लें कि उसको जैसे बताया गया वैसे ही वो काम कर रही है, टस से मस नहीं होती, अपनी अना को नहीं बीच में लेकर आती। और देखिए अपना मकसद पूरा कर रही है जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। अगर कायनात की हर चीज ही देख लें अपना मकसद पूरा कर रही है और अपनी हद में रहती है, जिसको जिस काम के लिए पैदा किया ना वो वैसे ही कर रहा है। इवन कुत्ता तक है ना, हम चाहे उसको पलीत कहें, चाहे उस नापाकी नापाकी के हमारे इश्यूज होते हैं, लेकिन वो भी अपना काम कर रहा है जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया गया, उसी को हर चीज पूरा कर रही है। अल्लाह ताला ने इंसान को भी तो किसी मकसद के लिए पैदा किया, वो फिर क्यों नहीं वो मकसद पूरा करता। तो देखें फिर वही के मुताबिक वो चलती फिरती है, रस चूसती है फलों से फूलों से, उन रास्तों पर चलती है। और आप देखें कि साइंसदान बताते हैं कि जो रास्ता ये लेती है ना किसी जगह पहुंचने के लिए, उसी रास्ते से वापस आती है, लॉस्ट नहीं हो जाती कि कहीं गई और उसके बाद। हमें तो देखिए कितनी डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, जीपीएस कितना लगाते हैं, कई दफा हाईवे पे जा रहे होते हैं याद ही नहीं होता कि इस तरफ जाने का था कि आने का था, ये एक जैसा ही लगता है। और ये इसके लिए तो कोई सड़कें नहीं बनी, और फिर भी कैसे हवाओं में जा रही है और उसको पता है कि मुझे कौन से रास्ते से वापस आना है। ते वापस आके सुबहान अल्लाह वो दूसरी मक्खियों को बताती है कि फलां जगह पे फल हैं, फलां जगह पे फूल हैं, उनका रस चूसना है। उसके लिए को उसकी कोई जुबान है भला? वो घूमती है इस तरह, हरकत करती, एट का हिंसा बनाती है और उससे बताती है कितनी दूर है वो जगह, वहां पे क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, सब बताती है। अल्लाह अकबर, कैसे इतना नन्ना सा जानवर उसको इतनी समझ है, इसलिए कि वो रब की हिदायत पे चलती है। रब की हिदायत पे चलने वाला ही अपना मकसद पूरा कर सकता है, और जो रब की हिदायतों को छोड़ देता है तो फिर तो वो देखिए फिर तो उससे तो वो चाहे कितना भी पीएचडी है, कितना बड़ा साइंसदान है या बिजनेसमैन है या बड़ा टीचर है, प्रोफेसर है, कुछ भी है, सदर है, वजीर है, मगर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि वो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाय का कल अनआम बल हुम अदल, जो अपना मकसद हयात ही पूरा ना करे तो वो तो चौपायों की तरह है, बल्कि चौपायों से भी गया गुजरा, इसलिए कि चौपाए भी तो अपना मकसद हयात पूरा कर रहे हैं, उनको जिस चीज के लिए पैदा किया गया वो वही काम कर रहे हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था कि इसका ध्यान बस मेरी तरफ रहे, ये तो अपना मकसद ही नहीं पूरा कर रहा, तो कैसे इंसान कहलाने के लायक, वो तो अनआम की तरह है। फरमाया लेकिन ये नहीं फरमाया उलाय का अदलुल अनआम, ये अनआम से भी ज्यादा गया गुजरा है, नहीं फरमाया ये अनआम की तरह है, दो स्टेप में बताया गया अनआम की तरह है, मगर फिर बताया गया नहीं अनआम भी अच्छे हैं इससे, क्योंकि वो अपना मकसद पूरा करते हैं, ये तो मकसद भी नहीं पूरा कर रहा, ये अल्लाह से बेवफाई करने वाला हो गया, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया वो उस रब के खिलाफ ही खड़ा हो गया। सूरह आदियात में नहीं घोड़े की मिसाल दी गई कि घोड़ा देखो कैसे अपने मालिक के लिए दौड़ता है, भागता है, सुबह सवेरे निकल खड़ा होता है, दुश्मनों के अंदर घुस जाता है। फिर यहाँ पे शहद की मक्खी का बताया गया, देखो वो कैसे अपना काम पूरा कर रही है, कैसे वो वैसे ही कर रही है जैसे अल्लाह ने उसको वही किया। तुम किसी चीज पे तो गौर करो, कहीं तो देखो, आंखें तो खोलो, क्या इससे समझ नहीं आती? हर चीज अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चल रही है, इंसान तुम ही क्यों भागी हो? तो वो रास्ते पे अल्लाह के बताए हुए, देखिए यहां पे सुबुला रब्बी की कहा गया, अल्लाह के रास्ते के ऊपर, यानी अल्लाह ताला ने जो उसको रास्ता बताया उसके ऊपर चलती है। तो अल्लाह ताला ने हमें भी तो कोई रास्ता बताया कि नहीं बताया? कोई रास्ता हमें भी बताया, सिराते मुस्तकीम, ऐसा है ना, हमें भी तो एक रास्ता दिया गया है जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम, हम भी चलते हैं कि नहीं? अगर नहीं चलते तो क्या हमसे एक मक्खी अच्छी नहीं है कि जो अपने रब के बताए हुए रास्ते पे ही चलती, जैसे उसको सिखा दिया गया वैसे ही करती है? जानदारों में देखें तो इसमें भी बड़ी मिसालें हैं, बड़ी मिसालें हैं इनकी। ये समझ क्या, इतनी उसको समझ है, इतनी उसके अंदर ब्रेन है, ये काम तो इंसान भी नहीं कर सकते जैसा वो कर रही। आज तक इंसान नहीं शहद पैदा कर सके, खुद सोचे ना आप जरा, कि हनी बनाना इंसानों के बस की बात नहीं, दूध बनाना इंसानों के बस की बात नहीं, इतनी अकल है इनको, इन जानवरों के, कि वो दूध भी बना रहे हैं, कोई शहद बनाने में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई है जिसने इनको हमारे फायदे के लिए पैदा किया, जिसने इनको इस काम पे लगा दिया और वो डेडिकेशन से वो काम किए चले जा रहे हैं। अब वो रस चूसती है, कहीं फूल नजर आते हैं वहां जाती है, फल नजर आते हैं वहां जाती है, रस चूस के लेकर आती है, फिर अपने छत्ते में डालती है, फिर उसके बाद ये सारा काम फीमेल मक्खियां करती हैं, फीमेल, नार नहीं करते, नार का काम सिर्फ मेटिंग का होता है, और एक इनकी क्वीन बी होती है, मलका मक्खी, उसका जिस्म दूसरी मक्खियों से बड़ा होता है, ये चूज करती हैं। अच्छा उसमें भी नहीं है कि दो पार्टियां बना लें, लड़ लड़ के पागल हो जाएं, कोई कहे जी हमारी क्वीन बनाओ, दूसरे कहे हमारी क्वीन बनाओ, कुर्सियों के लिए तो कितनी लड़ाइयां होती हैं। तुम इनसे ही सीख लो, इतनी शर्म की बात है ना हमारे लिए, अकल समझ शहूर रखने वाला इंसान कितनी नीचली सतह पे गिर जाता है कि एक मक्खी भी उससे बेहतर हो जाती। तो वो फिर चूज करती है एक मलका मक्खी को, ये सारा मैंने उस पर पढ़ा है इसकी रिसर्च में कि कैसे फिर, और फिर तमाम मक्खियां उसकी इताअत करती हैं, वो सब पे हुकूमत करती है। और फिर जब वो सब मिलके उड़ती हैं, सब उसको अपने ऊपर उठा लेती हैं, और फिर जब अपने छत्ते से निकलती हैं तो एक आवाज निकालती है भिलमिनाहट, उसी से वो वापस अपने छत्ते की तरफ लौटती हैं, अपनी रस चूस के लाती है, तो फिर उसको यहाँ पे आगे उगल देती है और वो शहद बनता है। अब आप शहद की मक्खी को उसकी डाइसेक्शन जरा करके देखें, उसको तोड़ के बीच में से खोल के देखें, कितना शहद मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। कैसे ये है सब कुछ, सोचते नहीं है? उसको ऑपरेशन करें जरा। तो ये नन्ही सी फैक्ट्री अल्लाह ताला ने लगा दी इतनी जबरदस्त चीज की, शहद जैसी चीज की, जिसमें इतनी अफादियत है, तो अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारा खादिम बना दिया। सब ये सब हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, कहीं गाय काम में लगी, वो उसके अपने बच्चे को तो इतना दूध थोड़ी चाहिए होता, वो तो दूध पी भी लेता तो इतना वाफिर होता है, कि जो इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने बनाया। तो अब वो ये काम कर रही है और मुख्तलिफ रास्तों पे चल रही है, फलों से ले लेके आ रही है रस, इंसान लगा के देखे ना ऐसी फैक्ट्री, पता चले ये ऐसा बना सकता है, तब भी नहीं बना सकता करोड़ों खर्च करके भी, एक एक फैक्ट्री लगाने पे कितने करोड़ों बनते हैं, तब भी उसका आउटकम ये नहीं हो सकता। सुबह सवेरे ये निकलती है रस चूसने के लिए, जिधर की सूरज की रोशनी आती है ना उधर को जाती है, और वापस अंधेरे से पहले घर आ जाती है, और फिर अपना एक सेंट छोड़ आती है उस फल पे फूल पे, कि जिस पे से रस चूस लिया ताकि दूसरी आए तो अपना टाइम ना वेस्ट करे यहाँ पे, कि उसी से चूसने शुरू कर दे कि मतलब मैंने चूस लिया यहाँ से, अब इसमें नहीं कुछ है, अब कहीं और जाओ। सुभान अल्लाह। और अपने काम पे डेडिकेटेड है, इसकी उम्र तकरीबन 2 महीने होती है, 30 से 60 डेज तक सिर्फ जीती है, ये इसकी मैक्सिमम उम्र है। सुभान अल्लाह, उसमें कितना बड़ा काम कर जाती, 30 से 60 डेज, और इसमें इतना शहद बना लेती है, शहद का काम करती है, ऐसी चीज बनाती है जो कि लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है, कितनी अफादियत वाली है। हम तो इतने सालों साल भी जीते हैं दुनिया में तो कोई फायदेमंद काम ही नहीं करके जाते, नाकारा जिंदगी, नाकारा वक्त जाया कर करके चले जाते हैं। आए या नहीं आए बराबर है, दुनिया में किसी के काम के नहीं बनते। ये कितना काम कर जाती है छोटी सी नन्ही सी अपनी जिंदगी में, 1 घंटे में 24 मील का सफर तय करती है, इतनी दूर चली जाती फिर भी लॉस नहीं होती कि वापस किधर से जाऊं, घर कैसे जाऊं। और अपनी जिंदगी में इतना सफर करती है कि दुनिया का एक चक्कर या इससे भी ज्यादा मुकम्मल हो जाए। तो 1 पाउंड सिर्फ शहद बनाने के लिए 550 के करीब मक्खियां काम करती हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगा देती 1 पाउंड के लिए। हमारे पास कितने पाउंड आता है हनी, और हम कभी वेस्ट कर देते हैं, चमची पे लगा रह जाता है, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। और इसके लिए कितनी उड़ाने उड़ती है, कितनी उड़ाने उड़ती है अपनी सारी जिंदगी में, और पूरी जिंदगी में सिर्फ आधा टीस्पून शहद बना लेती है। तो आप ये देखें कि छोटी सी मक्खी है ना, और वो अपनी पूरी मेहनत करती है, अपनी पूरी जिंदगी लगाती है इस शहद को बनाने के लिए, थोड़े से शहद को, थोड़ा छोटा सा बनता है फिर भी गिव अप नहीं करती। इंसान इतना ही कर ले कि अपनी जिंदगी से कुछ तो फायदा दे, वो मखलूक कितनी मेहनत करके जा रही है और हम कैसे हैं, हमारी एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन, और कभी आज मैं थकी हूँ, और कभी आज मुझे सुस्ती है, और आज मुझे डिप्रेशन है, और आज समर वेकेशन आ गई, आज विंटर वेकेशन आ गई, बच्चों की छुट्टियां क्या करें, सर्दियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां, शबरात की छुट्टियां, मेराज की छुट्टियां, कुछ छुट्टियां ही नहीं हमारी तो खत्म होती है। इसी तरह ये भी छुट्टियां करती रहे तो फिर तो 2 महीने तो उसके ऐसे ही गुजर जाएंगे, छुट्टियां करते करते या रिलैक्स करते करते। 30 लाख उड़ाने उड़ती है अपनी जिंदगी में, सुभान अल्लाह। और कॉपरेशन, कितनी कॉपरेशन के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, एक दूसरे से कॉपरेट करती है, दीन वालों के लिए हर एक काम के लिए कॉपरेशन जरूरी होती है, कोई भी काम कोई इंसान अकेला नहीं कर सकता, लेकिन दीन के मामले में तो बहुत ही कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे तो काम ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन उसमें हमारे मूड बन जाते हैं। तो बहुत सबक है अल्लाह की इन छोटी छोटी नन्ही सी मखलूकात में भी कितने सबक है। फिर फरमाया यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबा मुख्तलिफुन अलवान, इसके पेट से निकलते हैं ऐसे शहद जिसकी मुख्तलिफ रंग है, और वाकई कहीं सफेद है, कहीं सुर्ख है, गोल्डन सा है, कहीं बिल्कुल स्याह रंग का भी शहद होता है, सभी मुफीद है, इसके पेट से निकलते हैं। सुभान अल्लाह। फीही शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है, और शिफा उन क्या है, ये मतलब नहीं है कि हर तरह की बीमारी के लिए शिफा है, ये मतलब नहीं है, ये ताजीम के लिए कि इसमें बहुत ज्यादा शिफा है, अजमत इससे बयान की गई, शहद यानी इतनी शिफा है, ये कितनी इसके अंदर परफेक्शन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखारी की हदीस में आता है कि मीठी चीजें और शहद बहुत पसंद था, और शिफा का तो ये बात है कि एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने कहा कि मेरा भाई जो है उसको डायरिया हो गया ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको शहद पिलाओ, वो अगले दिन आया कहने लगा और ज्यादा हो गया, आपने फरमाया उसको और पिलाओ, फिर आया कहता और ज्यादा हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पिलाओ, तो फिर हत्ता कि उसका पेट साफ हो गया, تین بار آپ نے اس کو یہی فرمایا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کال سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تو اس نے پھر پلایا تو شفا ہو گئی. اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے اور اس میں بہت غذائیت ہے. اس کے تو آپ تو چونکہ اتنی ریسرچ آ چکی ہے، آپ کو خود بھی آن لائن بھی پتہ چل جائے گا انٹرنیٹ پہ کہ کتنی اس کے اندر چیزوں کی فائدے ہیں. اس کے اندر گردوں کے لیے، آنتڑیوں کے فیل کو بہتر بناتا ہے، اس میں کم کیلوریز ہیں چینی کی نسبت، جلدی خون میں حل ہو جاتا ہے، دماغ کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ دماغ کو شوگر چاہیے ہوتی کام کرنے کے لیے. اس میں یہ دماغ کو کام کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے. اسی طرح انسان کے لیے اس کے بی پی کو بیلنس رکھنے کے لیے بہت اچھا ہے، ایسیڈیٹی نہیں کرتا، جلد ہضم ہو جاتا ہے، چکنائی کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. اور اس کو مشروب کے طور پہ بھی پیا جاتا ہے، اس میں B1, B2, B3 وائٹمنز بھی ہیں، پھر اس میں آئیوڈین ہے، پھر کئی دوائیوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. موتیا بند کی جو مریض ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا تجربہ کیا گیا، تو اس سے ان کو فائدہ ہوا. جلد کی بیماریوں میں، عورتوں کے جو خاص امراض ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بڑا فائدہ مند ہے. خون بنانے کا عمل تیز کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے. تو بہت سارے فائدے ہیں اس کے. گرم ہوتا ہے تو ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے تو اور بھی زیادہ اس کے اندر افادیت ہے. تو بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جانوروں کو کام میں لگا دیا انسان کے لیے یہ فائدے دینے کے لیے. کئی مرغی انڈے دے رہی ہے، حالانکہ اس ہر انڈے سے تھوڑی اس کے بچے نکل آتے ہیں، وہ تو کم کم انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں. کہیں گائے، بکری، بھیڑ، اونٹ جو دودھ دے رہے ہیں، سارا دودھ تھوڑی ان کے بچے پی جاتے ہیں. کہیں یہ نحل جو ہے یہ شہد بنا رہی ہے، سارا شہد وہ خود تھوڑی کھا لیتی ہیں. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا بخشنے والی چیزوں کو پکڑے رکھو، ایک کیا ہے؟ شہد، اور ایک ہے قرآن. قرآن میں بھی شفا ہے نا، شفا ہے دل کے امراض کے لیے، شفا ہے اس کے اندر. یہ دل کے مریض اس قرآن سے اپنے لیے شفا پاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں شفا ہے، پچھنے لگوانے میں، شہد کے پینے میں، اور داغ لگوانے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں، یعنی آگ سے جو داغ لگایا جاتا ہے اس سے بھی پہلے علاج کیے جاتے تھے. اور انجیکشنز ہیں اور شہد، ان پہ شفا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا، ان میں ایک شہد کی مکھی ہے، ہدہد ہے، لٹورا ہے، اور چونٹی ہے. فوراً آپ پوچھیں گے چونٹی تو ہمیں کاٹ لیتی ہے، یہ ہوتا ہے. تو دیکھیں اگر وہ کاٹنے والی ہے، گھر کے اندر آ جاتی ہے، کاٹتی ہے، اس کے وجہ سے ضرر پہنچتی ہے، تو پھر تو اس کو مار سکتے. لیکن ایسے نہیں جیسے بچے چلتے چلتے باہر ہیں چونٹیوں کو مسل رہے ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں تو میں چونٹی کو مسل دوں اپنے پیروں تلے کیونکہ میں مسل سکتی ہوں، تو اس لیے اس کو مسل دینا. یا باہر شہد کی مکھیاں گھوم رہی ہیں، پھر وہ اپنا کام کر رہی ہیں، آپ کے پیچھے تھوڑی آ رہی، آپ ان کو مارنے چل پڑے. آپ کے گھر کے اندر آ کے آپ کو اس کا کاٹنے کا ڈر ہے، وہ الگ بات ہے. تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، یعنی یہ ایک چھوٹی سی بے طاقت سی چیز اتنی فائدہ مند شہد بناتی ہے، اور اس کا جو چھتا ہے نا وہ بھی افادیت والا ہے. یہ موم بناتی ہے، موم سے بنا ہوتا ہے. اور اس کا آزادی سے پھرنا، اپنے گھروں گھر آنے کو نہ بھولنا، راستوں کو نہ بھولنا، ان راستوں پہ چلنا، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نا بہت اس کے اندر سامان ہے. اسی لیے فرمایا इन्ना फिजाले कल आया तल्ले कौमी तफक्करून, जो गौर करेंगे ना उनको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा अपने लिए। आप देखें, आप एक एक चीज को पकड़ के बैठ जाए, अगर आप इनका इनके ऊपर रिसर्च करें आपको कितना मटेरियल मिल जाएगा। कई चीजें तो इंसान को समझ भी नहीं आती है, कैसे मलका मक्खी के अंडे देती है, एक दिन के अंदर हजारों अंडे देती है, फिर कैसे ये शहद की मक्खियां, एक मक्खियां जो फीमेल हैं जो अपना काम करती हैं, इसे पता चला कि देखिए काम फीमेल कर रही है और उससे कितने फायदा पहुंच रहा है। तो फीमेल ऐसे नहीं है कि नाकारा होकर के अपने आप को बैठ जाए कि मैं तो बस हांडी रोटी करूंगी और मेरा तो कोई काम नहीं है। इसके लिए दुनिया में आया कि खाने पकाते रहें और घर सजाती रहें और पहन पहन के और ओढ़ ओढ़ के बैठती रहें। नहीं, अपनी जात से फायदा पहुंचा देना, कोई ऐसा काम कर देना जो फायदामंद रहे दूसरों के लिए, एक शहद की मक्खी से ही सीख लें और इसकी फरमा बरदारी देखें अल्लाह ताला की, ये कितनी फरमा बरदार है कि उन्हीं रास्तों पर चलती है। हम खवातीन इससे ही सीख लें, मैं कितनी फरमा बरदारी करती हूं। तो मुसलसल मेहनत का भी सबक है इसके अंदर, मुसलसल मेहनत, मुसलसल काम, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, बहुत सारे सबक हैं। आप जब इनके कॉलोनीज के बारे में पढ़ेंगे आपको काफी कुछ पता चलेगा। वल्लाहु खलककुम सुम्मा यतवफ्फाकुम, और अल्लाह ही ने पैदा किया है तुमको फिर वो ही फौत करता है तुमको। मौत किसी इंसान के हाथ में नहीं, मौत किसी हादसे के हाथ में नहीं, मौत किसी बीमारी के हाथ में नहीं है कि कोई बीमारी है जो मार देगी, कोई हादसा है जो मार देगा। मौत भी अल्लाह ही की इज़्ज़त से आती है, उसी ने पैदा किया वो ही उठाएगा। और मिनकुम, और जो फौत नहीं होता, तो तुम में से बाज़ तो फौत हो जाते हैं ना बुढ़ापा आने से पहले, अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है तो क्या होता है। मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, फिर कोई तुम में से ऐसा है जो फेर दिया जाता है हकीर उम्र की तरफ। कौन सी उम्र है? जिसमें इंसान की अकल जवाब दे जाती है, समझ खत्म हो जाती है, और लिकई ला यालम, इस तरह के ना वो जाने, बाद इल्म शैआ, इल्म के बाद कुछ भी, कि इल्म वाला था और उसके बाद कैसे हो गया, बिल्कुल बेइल्म हो गया, अकल ही नहीं रहती ना, समझ ही खत्म हो जाती है। वो ही इंसान जो बड़ा अपने आप को समझता है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, आप मुझे बताएंगे, हमें क्या नहीं पता, हम सब कुछ जानते हैं, वो ही ऐसा हो जाता है कि उसको ये भी नहीं पता होता मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना हुआ है। मैं क्या अकल की भी बात कर रही हूँ कि बेअकली की कर रही हूँ, ये मैं क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल समझ खत्म हो जाती है। जहां उसकी और ताकतें जाहिल होने लगती हैं वहां अकल समझ भी खत्म हो जाती है, इल्म भी खत्म हो जाता है। तवज्जो दिलाई गई कि इंसान हकीकत पे अपनी गौर करो, कौन है जो इस वजूद को लेकर आया दुनिया में, किसने तुमको वजूद दिया कि तुम ये बन के बैठे हुए जो इंसान, ये किसने वजूद दिया? अल्लाहु खलकुकुम, अल्लाह ने पैदा किया। कौन है जो वापस ले जाता है? कभी बच्चे की उम्र में कोई होता है तो बचपन में ही उसको उठा लिया जाता है, किसी को जवानी में ले जाया जाता है, कोई उधेड़ उम्र बुढ़ापे पे पहुंच जाता है, एड़ियां रगड़ता है बिस्तरों पर, घर वाले भी कहते हैं अल्लाह अब इसके ऊपर रहम कर दे, लेकिन अल्लाह ताला नहीं उठाता। और चलते चलते फिर वो वक्त आ जाता है कि वो रसील उम्र को पहुंच जाता है, ऐसी उम्र जिसमें कुछ समझ अकल काम करना बंद कर दे, ऐसा बुढ़ापा तारी हो जाए, हाफजा जाता रहे, ये भी वक्त आता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्र से भी पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ुबिका मिनल बुख्ली वल कसली والحرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. اللہ مجھے بخیلی سے، عاجزی سے، یعنی سستی سے، بڑھاپے سے، رزیل عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اپنی پناہ میں لے لے. اور یہ عمر جو ہوتی ہے اتنی ناکارا عمر ہوتی ہے نا، انسان کسی کے لیے تو کیا کرنا ہے، اپنے لیے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور بعض دفعہ تو ایسی عقل پھر جاتی ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، تو سمجھ ہی نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں. یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ وہی انسان، جب بھی میں کسی بہت بوڑھے کو دیکھتی ہوں یہی بات میرے ذہن میں آتی، یہ وہی انسان ہے جو ایک دن کیسے جوانی کی توانائیوں میں ہوگا، رانائیوں میں ہوگا، چہرہ کھلتا ہوا ہوگا، سمجھ ہوگی، عقل ہوگی، اکڑ کے چلتا ہوگا، طاقت ہوگی، قوت ہوگی بازوؤں میں، ایکٹیولی بھاگتا دوڑتا ہوگا. آج کیسے بجھ کے بیٹھ گیا ایک کونے میں اس کو ڈالا ہوا، جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے آپ لے جاتے ہیں اسی طرح بوڑھے کا بھی حال ہو جاتا ہے. جیسے اس وقت تھا نا جب پیدا ہوا، کچھ نہ سمجھ، نہ عقل، نہ کوئی دماغ، نہ کوئی علم، بالکل واپس اسی کے پر چلا جاتا ہے، پھر سے بچہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا یہ اتنی بڑی نشانی نہیں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے؟ چلو جب آپ بچے تھے اس وقت تو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا تھے، لیکن کیا بوڑھوں کو نہیں دیکھتے؟ پھر واپس اس کے اوپر چلے جانا، وہ انسان جو اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھتا ہے، سمجھتا ہے میرے اوپر کون کوئی بات کر سکتا ہے، میں اتنا جانتی ہوں، مجھے پتا ہے، کیسے بن جاتا ہے؟ چاہے زبان سے نہیں بھی بولے نا، ہم اپنے ایکشن سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ لو مجھ سا ہو تو سامنے آئے. ایسی اکڑ ہوتی ہے جوانی میں، ایسی طاقت کا نشہ ہوتا ہے. اور جوانی کا تو خیر اپنا ہی ایک نشہ ہے، جوانی میں تو انسان کسی کو سمجھتے ہی نہیں، ماں باپ کو بھی کیسی کیسی باتیں سنا دیتے، سوچ اپنی جوانی کا بڑا زوم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے اس کو واپس وہیں پہ لے آتا ہے. من نعمر نقص فی الخلق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہم اس کو واپس اسی حالت پہ الٹا دیتے، اسی ساخت پہ، عقل ہی الٹ جائے. کیا یہ وہی ہے؟ پہچانا جاتا ہے کہ وہی ہے؟ جھریوں بھرا چہرہ، لگتا ہے کبھی اس پہ جوانی آئی نہیں تھی، اتنی کمزوری کہ لگتا ہے کہ کبھی طاقتور تھا ہی نہیں، آئے کس حال کو پہنچ گئی. اسی لیے بہت لمبی عمر کی کسی کو بھی دعا نہیں دینی چاہیے. مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو اللہ بہت لمبی عمر دے. کیا کرنا ہے اتنی لمبی عمر، کیونکہ بہت لمبی عمر رزیل بڑھاپے تک ہی پہنچائے گی. ہاں یہ دعا دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی عمر عطا فرمائے، یہ مت کہا کریں اللہ آپ کو لمبی عمر دے دیں. لمبی عمر مینس بیماریاں، بڑھاپا، بستروں پہ ایڑیاں رگڑنا، محتاجی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ اس میں نیکیاں کرے. یعنی نیکیاں کرنے کے لیے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دماغ چل رہا ہوگا، کچھ اعضاء چل رہے ہوں گے، تو اتنی ہی عمر رہے جس میں انسان نیکیاں کر سکے. اس کے بعد کی کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے رزیل بڑھاپے سے بچا لیا تھا. 63 عمر کچھ بھی زیادہ نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چلتے پھرتے آپ کو اٹھا لیا گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے جو زیادہ ہو جاتے ہیں بالکل بچوں کی طرح بہیو کرنے لگتے ہیں، بالکل ایسے جیسے، اور ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. کیسے ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے کس حد تک پہنچ جاتا ہے؟ تم سمجھتے ہو تم بڑے علم والے، تمہیں بڑا پتا ہے، اور پھر تم، پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے تو اس کے بعد بڑا ہو کے کیا بن جاتا ہے؟ خصیم و مبین بن جاتا ہے، بڑا جھگڑالو، بڑا جھگڑالو، بڑے دلیلیں دیتا ہے، بڑے جھگڑتے جھگڑتا ہے. اور اس کی اوقات یہ ہے کہ اس کی عمر بڑھتی جائے گی نا تو ایک دن اس مقام پہ پہنچ جائے. غور کریں آیات پہ، یہ غور و فکر والی ہیں. کبھی نہ بھولیں کہ یہ جوانی، یہ طاقتیں، یہ قدرتیں، یہ سب کچھ ایک دن زائل ہو جائے گا. پھر انسان پاس کتنا بھی پیسہ ہو اسے کیا کرنا ہے اس پیسے کو؟ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اس پیسے کو انجوائے کرنے کی. उस पैसे को उससे कोई काम में लाने की अकल ही नहीं, समझ ही नहीं, कुव्वत ही नहीं है, बस बिस्तर पे पड़ा हुआ और चलता फिरता भी है लेकिन अकल ही चली जाती। और अब आप देखें तो ये बिल्कुल, ये जो डायमेंशिया वाले आज ये बीमारी अब शुरू हो गई, पहले जमाने के अंदर इतनी नहीं थी, अब बहुत कॉमन हो गई है कि लोगों को ऐसे ही हालत पे पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल ही भूल जाता है, अपना नाम तक भूल जाता है, अपने प्यारे रिश्ते भूल जाते हैं, हत्ता के घर वालों के लिए तो वो ऐसे हो जाता है कि अजनबी है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं पहचानते, वो तो खो देते हैं। बाज लोग अपनी वालदा का बताते तो उनको लगता है कि हमारी तो वालदा हमारी माँ रह ही नहीं कहीं, क्योंकि वो पहचानती नहीं किसी को, अपनी औलाद को भी पहचानना बंद कर देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला माफ करे और ऐसी ऐसी जिंदगी से भी महफूज रखे। एक और भी दुआ ना, लव मई नियाजुबी का अन उरद्दा इला अर्जल उम्र, यही बात अन उरद्दा कहते हैं ना, मई मई यूरदू इला अर्जल उम्र, तो उसमें भी अन उरद्दा इला अर्जल उम्र कि मैं लौटा दिया जाऊं रजील उम्र की तरफ। वाउजुबी का मेरी फतना दी दुनिया, वाउजुबी का मेरा साबिर का भी हर नमाज के बाद पढ़े, क्योंकि इंसान इस जगह पे आ जाता है कि वो दूसरों के लिए इबरत की तस्वीर बन जाता है, इतना बेबस। और अगर ये बात समझ नहीं आती तो किसी ओल्ड होम में जाके देखें, जरूर जाएं, जाके देखें वहां पे बूढ़ों का क्या हाल है, जिंदगी की रमक भी खत्म हो चुकी, ख्वाब मिट चुके, उनकी आंखें बस अब मुंतजर हैं तो अपनी वापसी की। मौत भी इंसान के अपने हाथ में नहीं होती, वो जाना चाहे भी तो नहीं जा सकता जब तक अल्लाह का इज्जत ना, वो बस एक ही इंतजार में है कि कब कब उनके लिए फरिश्ता आ जाए। और आप देखें कि अगर इंसान को जिंदगी मिलती है और मिलती चली जाती है तो यही है उसका अंजाम, इससे बच नहीं सकता कोई, चाहे वो आज कितना ही फिट हो और अपने आप को कितनी क्रीमें और इंजेक्शन और सर्जरीज करा के जवान रखने की कोशिश करता रहे, कितनी अपनी हेल्दी डाइट खाता रहे, लेकिन एक दिन ताकत ने भी खत्म हो जाना और जवानी ने भी, नहीं रोक सकते। क्या ये समझ नहीं आती, क्या इससे पता नहीं चलता कि तुम कितने बेबस हो, तुम तो अपनी सेहत को भी नहीं अपने पास बरकरार रख सकते, तुम अपनी जवानी को अपने पास नहीं रोक सकते, तुम कितने बेबस हो, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, फिर भी इंसान फूले नहीं समाता, इंसान भूला रहता है, फिर भी इंसान यही समझता है कि नहीं नहीं मैं ही कादिर हूं, मैं इन पावर हूं और ये इसी तरह मेरी जवानी चलती रहेगी हमेशा। आज अगर भागते फिरते हैं और तवानाइयां है ना, तो एक दिन ऐसा होता था कि इंसान की ये सब आजाई खुद उस साथ बेवफाई कर देते हैं, नहीं साथ देते, ना जहन साथ देता है ना जिस्म साथ देता है। फिर वही जो कभी किसी से काम कराने को आर समझता था, मैं क्यों किसी को कहूँ, मैं खुद अपना करूंगी, वही बेचारा किसी और के ऊपर पड़ जाता है। तो इससे पहचाने अपने रब को, पहचाने, ये जो ताकत स्लो डाउन होती है ना, हम अभी रजील बुढ़ापे पे अल्लाह ना कभी पहुंचाए, लेकिन उस तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन ये जो वक्त का गुजरना है ना, ये हमारी ताकत को तो स्लो कर रहा है, दिमाग को स्लो कर रहा है, उस तरह की हिम्मत नहीं रहती, एक पीक आती है 30 पे पीक आ जाती, फिर उसके बाद डाउन द हिल ही है, चलो 30-35 कह लें, उसके बाद क्या है, कोई बीमारियों से महफूज रह जाए तो बहुत ही शुक्र अदा करें, ना किसी को कोई बीमारी किसी को कोई बीमारी, और इंसान बेबस है, कोई चीज को भी नहीं आप रोक सकते। अल्लाह अकबर, वही अकल, वही इल्म, वही ताकत जिसमें बड़ा नास था, वही देखें कैसे साथ छोड़ जाती है। गनीमत जाने इस वक्त को जो आपको मिला है, हमेशा नहीं होगा ये अकल, हमेशा नहीं रहेगी ये तवानाई, हमेशा नहीं रहेगी, नहीं ताकत रहेगी, पर हम इंतजार करते हैं कि ऐसे वक्त का कि जब ये हो जाएगा और जब वो हो जाएगा तब तब मैं कुछ करूंगी, तब मैं नेक बनूंगी, तब मैं कुरान पढ़ूंगी, तब मैं नमाजें पढ़ूंगी, मैं तब ये काम करूंगी। तो आपको पता है कि हमेशा ऐसे ही चलता रहे। और इकरमा फरमाते हैं, बड़ी जबरदस्त ये बात है कि जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उसकी ये हालत नहीं होती, रजील उम्र तक नहीं वो पहुंचता। तो इससे हमें पता चलता है कि कुरान पाक का पढ़ना, इसके साथ ताल्लुक जितना जिसका ज्यादा होगा ना, उतना वो ऐसे बुढ़ापे से बच जाएगा, अकल के फिर जाने से। जिसमें अकल चली जाती है ना, उससे वैसे तो बुढ़ापे की जाहिर है जो एक एज है उसके अंदर इंसान की ताकत तो नहीं रहेगी, लेकिन अकल का जो फिर जाना है ना, उससे ये लोग महफूज रहते हैं। और आप वाकई देखें, मैं तो बहुत सारे लोगों से ये सुना कि जी फलां इतने बूढ़े हो गए, बेड रिडन भी हो गए, लेकिन कुरान याद था, जितना कुरान याद किया हुआ था वो पढ़ती रहती थी, नमाजें अपनी याद थी। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत के दिनों के अंदर इसको अपना साथी बनाया था। इसलिए तो ये तो वाकई ही इस दुनिया में भी जब सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं ना, तब ये आपका साथी रहता है कुरान, अकल के फिर जाने से महफूज रखता है। तो सारी चीजें भी भूल जाते हैं या सारी कोई भी चीज नहीं याद रहती, तो कुरान याद है। कैसे? कितनी बड़ी हैरत की बात है ना। तो ये ना भूलिएगा कि गुजरता हुआ ये वक्त हमें इसकी तरफ ले जा रहा है, अगर हम जिंदा रहे तो, वरना बाज को तो अल्लाह वैसे ही फौत कर देते। तो या तो मौत लिखी हुई है या ये है चीज। अब इंसान की ना एक ऐसी पिक्चर दिखाई गई कि वो हथियार डाल दे, ऐसे लगता है ना कि क्या है फिर मेरे हाथ में, हथियार डाल के सबमिट क्यों नहीं फिर कर देती उस ताकतवर जात के सामने जो इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, जो अलीम भी है कदीर भी है, जिसका इल्म जायल नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला, वक्त के गुजरने के साथ कम नहीं हो जाता, जिसकी ताकत में कभी कमी नहीं आती, हमेशा कुदरत वाला है, वो हमेशा से इल्म वाला है और हमेशा तक है। तुम हो जिसकी ताकत भी खत्म हो जाती, कुदरत भी खत्म हो जाती, इल्म भी खत्म हो जाती, हत्ता कि दोबारा बच्चे बन जाते हो। अल्लाह ताला की जात इससे पाक है, उसके सामने क्यों नहीं फिर झुक जाते? एक ऐसा इंसान जिसकी ताकत जाहिर होने वाली हो, इल्म जाहिर होने, उसके सामने क्यों नहीं झुकता जिसकी ताकत को जवाल नहीं, जिसके इल्म को जवाल नहीं? कितना बड़ा मैसेज है ना इंसान के लिए। अपने आप को जरा इस जगह पे खड़े करके देखिए, ये आयत नहीं है, हमें हमारी जिंदगी दिखा रही, एक आईना है। अपने आप का फ्यूचर देखें इसके अंदर, ये अगर जिंदगी चलती गई चलती गई चलती गई तो फिर ये है, तो फिर क्यों ना सबमिट करते हैं आज, क्योंकि एक दिन तो हमारा जिस्म भी सबमिट कर देगा, हमारी अकल भी सबमिट कर देगी। फिर नाज किस बात का, फिर गरूर किस बात का, फिर बातें किस बात की, फिर झगड़े किस बात की, फिर दलीलें क्यों दे रहे? तुम नहीं झुकोगे तो एक दिन अल्लाह ताला खुद झुका देगा, तब भी तो झुकना ही है ना। आप देख लें एक ही बात बार बार पूछते जाते हैं, मेमोरी खत्म हो जाती है, बार बार वही सवाल, बार बार वही बातें। इंसान सोचता है ये वही है, ये तुम्हारी अम्मी ऐसे होती थी, ये तुम्हारे अब्बा ऐसे होते थे, उनकी एक डांट होती थी, उनके घर के अंदर कितना रूबार दबदबा होता था, बच्चे बन गए बिल्कुल। अपने सामने हम देखते हैं फिर भी अपने आप को नहीं कभी सोचते, अपने सामने अपने बुजुर्गों को देखते हैं, अपने सास ससुर को देखते हैं, या अपने घर के घर में कोई बुजुर्ग होते हैं, अगर उनकी इतनी जिंदगी होती तो देखते नहीं है, फिर खुद क्यों नहीं होश से काम लेते, फिर क्यों नहीं गौर फिक्र करते? कैसी ये हयात है ना इंसान को झंझोड़ देने वाली, अंदर तक जो झंझोड़ दे इंसान को, कि उसको ला के हकीकत में खड़ा कर दे। ये जो फूल्स वर्ल्ड में हम रहते हैं ना, ख्वाबों की दुनिया है, पता नहीं किधर दुनिया में गुम है, झंझोड़ के ऐसे लगता है किसी ने हमारी आंखें खोल दी, हकीकत दिखा दी,
फिर भी अगर सो ही रहे, फिर भी सुन के भी सुना नहीं तो क्या पाया। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه كروا